धर्माराव निश्चल दृष्टि से गणाचारी की आंखों में देखने लगा। गणाचारी बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? राजा में बिगाड़ पैदा हो गया है। हजार फण वाले नाग ने उसे स्वप्न में डस लिया है। धर्माराव चुपचाप मंदिर की ओर चल पड़ा। गणाचारी भी उसके पीछे पीछे चली। जब कभी गणाचारी आती, पुजारी सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी के मंदिर का द्वार खोल दिया करता। यही वहाँ का नियम था। आज ही पुजारी ने द्वार खोल दिया। भभूत लाने के लिए वह एक तिपाही के पास गया, जिस पर स्वामी का यंत्र रखा था। यंत्र की पूजा होती थी। पुजारी भस्म निकालने लगा तो वह तिपाही एक तरफ को झुकने लगी। धर्माराव ने इसका कारण पूछा तो पुजारी बोला, कल रात उसकी एक टांग टूट गई, मैंने उसे फिर से जमा दिया है। भस्म लेकर दोनों बाहर आए। धर्माराव लौटने लगा, उसने गणाचारी को देखा। गणाचारी तुरंत बोली, ठीक निकली ना मेरी बात, एक टांग टूट गई है, अब बचे हैं केवल तुम और मैं। धर्माराव के मन में कृष्णम नायडू की मूर्ति सजीव हो उठी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धर्माराव गणाचारी को छोड़कर बाजार से गुजर रहा था। वह सिर झुकाकर चला जा रहा था कि इतने में किसी ने कहा, बेटा इधर आओ। उसने सिर उठाकर देखा, रंगा जम्मा ने उसे पुकारा था। यही वह क्षत्रिय स्त्री थी जिससे रामेश्वर शास्त्री ने विवाह किया था। धर्माराव भीतर गया। रंगा जम्मा ने उसे चटाई पर बिठाया। उसकी आयु कोई 60 वर्ष की थी। गौर वर्ण था, आकर्णांत नयन थे, परंतु इधर विधवा होते ही मानो उसका सारा सौंदर्य लुप्त हो चुका था। आज उस व्यतीत सौंदर्य के कतिपय चिन्ह भर रह गए थे, जैसे राजा के जाने पर उजड़ी राजधानी में रह जाते हैं। रंगा जम्मा के एक बेटा था, उसका नाम रामचंद्र राजू। अब उसकी आयु कोई 30 वर्ष की थी। रामचंद्र राजू 10 वर्ष पहले कहीं चला गया था। कभी कभी माँ के नाम चिट्ठी भेजा करता था। रामेश्वर शास्त्री ने विवाह के समय ही रंगा जम्मा के नाम 10 एकड़ जमीन कर दी थी। रंगा जम्मा अथवा उसकी संतान का बाकी जायदाद से कोई संबंध न था। वैश्य और शूद्र स्त्रियों से भी शास्त्री जी ने इसी शर्त पर विवाह किए। रंगा जम्मा अपनी 10 एकड़ जमीन की आय पर सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी। रामेश्वर शास्त्री को जब दुर्दिन देखने पड़े, तब रंगा जम्मा ने अपनी 10 एकड़ जमीन भी शास्त्री जी को लौटानी चाही, लेकिन शास्त्री जी ने उसकी एक न सुनी। फिर भी लुका छिपा कर रंगा जम्मा चावल दाल आदि पदार्थ शास्त्री जी के घर भेजती रहती थी। हाँ, इस बात का शास्त्री जी अथवा धर्माराव को पता लगने न दिया जाता था। रंगा जम्मा ने आज तक धर्माराव से प्रत्यक्ष कही बात नहीं की थी, तथापि अपनी सगी माँ की बातों से धर्माराव जान चुका था कि रंगा जम्मा का उस पर बहुत प्रेम है। आज सहसा उसके बुलाने पर धर्माराव को आश्चर्य हुआ। उसे देखकर रंगा जम्मा का हृदय भर आया, मानो वह अपने सगे पुत्र को देख रही हो। पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उस प्रेम को किस प्रकार व्यक्त करे। अतएव वह कमरे के द्वार पर यूं ही खड़ी रही। धर्माराव ने पूछा, भैया के पास से कोई चिट्ठी आई है? रंगा जम्मा बोली, बेटा चिट्ठी को आए हुए 1 महीना बीत गया। सुना है कि किसी पूर्वी प्रांत में जमीन खरीद कर खेती कर रहा है, वहीं हमारे क्षत्रिय जाति के लोग अधिक रहते हैं। कुछ और कहना चाहती थी पर रुक गई। धर्माराव ने उसका आशय ताड़ लिया और पूछा, भैया ने विवाह किया? रंगा जम्मा, यही तो समस्या है बेटा। पहले तो उसे लड़की देने के लिए कोई तैयार नहीं था। फिर धर्मशास्त्र आदि जानने वाले एक बूढ़े ने अपनी पौत्री का उससे ब्याह कराया। लड़का यहाँ वापस आना चाहता है, फिर भी मुझे वहाँ बुलाता है। धर्माराव, आप ही वहाँ क्यों नहीं चली जाती? रंगा जम्मा, मेरा वहाँ क्या धरा है बेटा? ससुराल छोड़कर मैं पराये प्रांत में क्यों जाऊँ? जहाँ तुम्हारे पिताजी मरे, वहीं मैं भी मरूँगी। धर्माराव का मन भर आया। उस स्त्री की निष्ठा पर प्रसन्न होकर वह सोचने लगा, मेरे पिताजी धन्य हैं। रंगा जम्मा, बेटा मैंने उसे यहाँ बुलाया है, तुम सब भाई बंधु एक जगह रहो तो अच्छा है, एक दूसरे का हाथ बटा सको। उस पराये प्रांत में जहाँ अपना कोई नहीं, बेचारा कितने कष्ट सहता होगा। वह भी यहाँ आना चाहता है, पर शायद उसकी पत्नी नहीं मानती। धर्माराव, उनकी कोई संतान है? रंगा जम्मा, सुना है कि एक लड़का हुआ था पर जाता रहा। थोड़ी देर बैठकर धर्माराव ने विदा ली। जाते जाते वह सोचने लगा, यह सृष्टि बड़ी विचित्र है, प्रेम भी बड़ा विचित्र है। मैं कौन हूँ? यह स्त्री कौन है? कितना विलक्षण है हमारा संबंध। वह अपने पिता के विवाह के बारे में सोचने लगा। एक बार रामेश्वर शास्त्री 25 वर्ष की आयु में तीर्थ यात्रा करने गए थे। तब उनकी पत्नी सावित्री देवी सयानी नहीं हुई थी। उनका विवाह 18 वर्ष की आयु में हो चुका था, परंतु विवाह के समय सावित्री देवी की आयु केवल 3 वर्ष की थी। शास्त्री जी के पिता का देहांत हुआ और उसके बाद ही शास्त्री जी ने रंगा जम्मा को से ब्याह किया। रंगा जम्मा के पिता क्षत्रिय कुल के थे, गंजाम जिले के निवासी थे। जमींदारी के कारोबार के सिलसिले में जब शास्त्री जी गंजाम गए तब रंगा जम्मा के पिता रंगराजू से उनका परिचय हुआ। एक दिन बातचीत के दौरान रंगराजू बोले कि हमारे देश में अर्जुन, राम आदि योद्धाओं की धनुर्विद्या अवलुप्त हो गई है। रामेश्वर शास्त्री ने उस विद्या में अपनी सामर्थ्य का उल्लेख किया। रंगराजू भी धनुर्विद्या के अच्छे जानकार थे। दोनों ने एक दूसरे की परीक्षा ली। इस परीक्षा में रंगा जम्मा रामेश्वर शास्त्री पर अनुरक्त हो गई और उनके साथ चली आई। रंगराजू पहले तो बिगड़े, पर जब उन्हें पता चला कि दोनों ने शास्त्रीय विधि से विवाह कर लिया है तो चुप हो गए। इसके कोई 4 बरस बाद शास्त्री जी तीर्थ यात्रा करने चले। रंगा जम्मा भी उनके साथ थी। रास्ते में एक वैश्य परिवार से उनका परिचय हुआ। प्राचीन काल में वे आंध्र प्रांत के ही निवासी थे, पर अब महाराष्ट्र में रहते थे। आज भी वे टूटी फूटी तेलुगु बोलने की चेष्टा करते थे। आंध्र प्रांत के लोगों पर उनका अपार प्रेम था, इसी कारण दोनों परिवारों में मैत्री बढ़ी। वैश्य गृहस्थ का नाम था रामकृष्ण, देखने में महाराष्ट्रीय ब्राह्मण सा लगता था। वह अपनी पत्नी और 14 बरस की लड़की के साथ तीर्थ यात्रा करने निकला था। लड़की कुंवारी थी। जहाँ तहाँ वे ठहरते, शास्त्री जी स्वयं रसोई बनाते और रंगा जम्मा को खिलाते। यह देखकर रामकृष्ण को कुछ संदेह हुआ और उसने शास्त्री जी और रंगा जम्मा के संबंध का हाल जानना चाहा। शास्त्री जी ने उसे बताया कि रंगा जम्मा उनकी पत्नी है, क्षत्रिय स्त्री। वे ब्राह्मण और क्षत्रिय स्त्रियों से विवाह कर चुके हैं और वैश्य तथा शूद्र स्त्रियों से भी करना चाहते हैं। रामकृष्ण मुस्करा कर चुप हो गए। तीर्थ यात्रा करते हुए वे नर्मदा के तट पर पहुंचे। वहां नदी में स्नान करते समय रामकृष्ण की लड़की हेमावती का पांव फिसला और वह धार में गिर पड़ी। रामकृष्ण शोकातुर होकर चीख उठा, शास्त्री जी मेरी लड़की को बचाइए, मैं उसका ब्याह आपसे करा दूंगा। शास्त्री जी नदी में कूद पड़े और हेमावती को मृत्यु से बचा लाए। देने को तो रामकृष्ण ने वचन दिया था, परंतु उसका पालन करना आसान न था। हेमावती अति सुंदर थी। महाराष्ट्र प्रांत में रहने के कारण उस आयु तक वह कुंवारी रही। आंध्र प्रांत में होती तो उसका विवाह कभी का हो चुका होता। जब से लड़की ने शास्त्री जी को देखा तभी से उसके मन में एक नया भाव उत्पन्न हुआ। शास्त्री जी आजानुबाहु थे, गोरे घुमटे थे, अत्यंत सुंदर थे। निरंतर व्यायाम से उनका शरीर हृष्ट पुष्ट और चमकीला बन गया था। ऐसे सुदर्शन पुरुष पर कौन सी स्त्री लट्टू न होगी, इसका जीता जागता प्रमाण थी रंगा जम्मा। हेमावती सोचने लगी, पिताजी वचन दे ही चुके हैं और वह शास्त्री जी की पत्नी बन ही चुकी है। अब प्रश्न यह था कि पिता से पिंड कैसे छूटे। उस समय रंगा जम्मा की आयु 20 बरस की थी। रंगा जम्मा और हेमावती ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। शास्त्री जी को भी अपना रहस्य बताया। शास्त्री जी को यह चिंता सता रही थी कि उनके तृतीय विवाह पर कहीं रंगा जम्मा आपत्ति न उठाए, पर अब उनकी चिंता जाती रही। अयोध्या पहुंचने पर एक दिन सवेरे रामकृष्ण ने नींद से जाकर देखा तो उसकी लड़की हेमावती अपने पति के साथ 150 मील आगे जा चुकी थी। रामकृष्ण ने कुछ बखेड़ा उठाना चाहा, पर उनकी पत्नी ने रोक कर कहा, ठीक ही तो है, उसका पति उसे ले गया है। शास्त्री जी ने घर लौटकर विवाह किया। विवाह के 4 बरस बाद दोनों पति पत्नी महाराष्ट्र गए और हेमावती के माता पिता से मिले। रामकृष्ण ने दामाद से ठीक ठीक बात नहीं की, परंतु सास और सालों ने बड़ी आवभगत की। हेमावती के 2 लड़कियां और 1 लड़का हुआ। शास्त्री जी ने दोनों लड़कियों के विवाह बड़ी धूमधाम से किए और वे ससुराल चली गईं। शास्त्री जी की आयु जब 40 बरस की थी तब हेमावती चल बसी। लड़का श्रीधर अपने हिस्से की जायदाद बेचकर व्यापार करने कहीं दूर चला गया। रामेश्वर शास्त्री रामचंद्र राजू को महान धनुर्विद्याविद और श्रीधर को महान व्यापार कोविद बनाना चाहते थे, परंतु वे दोनों पिता से कुछ कहे बिना ही घर से चले गए। शास्त्री जी ने धर्माराव को वेद विद्या में निष्णात बनाना चाहा, परंतु अपनी पत्नी और साले के विरोध के कारण उसे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ी। इस प्रकार उनके तीनों ही विवाहों के आदर्श असफल हुए। गाँव में एक गरीब किसान रहता था जिसकी एक लड़की थी, उसका नाम थमंगा। वह अजीब लड़की थी। बचपन में रामेश्वर शास्त्री से ठट्टा करती आई थी। हंसी मजाक में शास्त्री जी कहा करते, मंगा देख मैं तुझसे शादी करूंगा। ईश्वर मंगा कहती, मुझसे शादी करके क्या पाओगे, मेरी लातें खाना चाहते हो क्या। शास्त्री जी कहते, अच्छा अच्छा लगाना लाते हैं। मंगा हंस पड़ती। वह गरीब किसान अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकता था। उसकी पत्नी मंगा के बचपन में ही चल बसी थी। मंगा की आयु 18 वर्ष की हुई, पर विवाह न हुआ। इस चिंता में उसका पिता भी चल बसा। मंगा का कोई आश्रय आसरा न रहा। कुछ नौजवान उसे बुरे रास्ते पर ले जाने का प्रयत्न करने लगे। इस मुसीबत से तंग आकर मंगा शास्त्री जी के पास आई और कहने लगी, तुम कहा करते थे ना कि मुझसे शादी कर लोगे, अब मेरे खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है। इसके अलावा उन बदमाशों से तंग आ गई हूँ, रात भर मेरे घर पर कंकर फेंका करते हैं, अब मेरा कोई सहारा नहीं। बताओ, मुझसे शादी करोगे या मुझे भ्रष्ट होने दोगे? शास्त्री जी ने मंगा को अपने घर में आश्रय दिया। सावित्री देवी सयानी हो चुकी थी, उनकी बड़ी लड़की 1.5 बरस की थी। सावित्री देवी को शास्त्री जी के अन्य विवाह पसंद न थे, उन्होंने मंगा को घर में टिकने नहीं दिया। अंत में शास्त्री जी ने मंगा पर तरस खाकर उसके लिए अलग घर बनवाया और उनकी उसके नाम पर भी 10 एकड़ जमीन लिख दी। तब से मंगा का जीवन सुख चैन से गुजरने लगा। मंगा के अनुरोध पर शास्त्री जी ने उसके गले में मंगलसूत्र बांधा। इसके 4-5 वर्ष बाद मंगा के एक लड़का हुआ, परंतु इसे देखते ही मंगा की सुधि जाती रही। वह कैसा शिशु था, काड़ी से भी दुबला, शरीर हरे रंग का, बालों का रंग राख जैसा। सब लोग कहने लगे, सांप का बच्चा पैदा हुआ है। परंतु दोनों हाथ, दोनों पांव, चेहरा, आंखें, जीभ इत्यादि सभी अवयवों के होते हुए उसे सांप कहना कैसे संभव था? अन्य किसान स्त्रियां उसे देखकर उपहास करने लगी। जाति के अभिमानी कुछ लोग कहने लगे, भ्रष्टा को अच्छी सजा मिली है। सुधी आने पर मंगा ने शिशु को गले लगाया। शिशु इधर उधर हिलने लगा, ऐसा लगता था कि कोई सांप बल खा रहा है। मंगा ने उसे पकड़ कर रखा। शिशु रो उठा, उसकी आवाज़ सांप की सी सुन पड़ी। मंगा ने सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी को याद करके शिशु के शरीर पर अरंडी के तेल की मालिश की। लोग झुंड के झुंड आकर उस विचित्र शिशु को देखने लगे। कुछ दिन बाद मंगा को यह बात बुरी लगी और उसने अपने बच्चे को छिपाना शुरू किया। शास्त्री जी बच्चे को देखने आए, बच्चे ने शायद पिता को पहचान लिया। उनके पास जाते ही उसका रोना बंद हो गया। शास्त्री जी ने बच्चे को देखा, फिर गंभीरतापूर्वक सोचने लगे। उन्होंने मंगा के गालों को स्पर्श करके कहा, मंगा तू बड़ी भाग्यवान है, सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी की तुझ पर पूरी पूरी कृपा है, तुझ में धर्म का लोप नहीं हुआ है, उसकी रक्षा कर। मंगा की दृष्टि में शास्त्री जी ही भगवान थे। पड़ोस वाली स्त्रियों की बातों से उसके मन में बच्चे के प्रति थोड़ा सा अनादर उत्पन्न हुआ था, पर अब शास्त्री जी की बातें सुनकर उसका पुत्र प्रेम दुगुना तिगुना हो गया। बच्चे की आयु 1 बरस की हुई, वह कहीं एक जगह ठहरता न था, देखते देखते रेंगता हुआ कहीं का कहीं पहुंच जाता। घर के पीछे मंगा तरकारियां उगाती थी, उसका बच्चा उन्हीं तरकारियों के पौधों में जा बैठता और मंगा को दिखाई न देता। वह घबरा जाती कि कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा उसे डस न आए। एक बार एक पड़ोसिन ने उसने अपनी आशंका व्यक्त की। पड़ोसिन बोली, अरे कहाँ का कीड़ा और कहाँ का मकौड़ा, तेरा बच्चा खुद कीड़ा मकौड़ा है। यह सुनकर मंगा को बड़ा क्रोध आया, पर वह कुछ कर नहीं पाई। बच्चा 5 बरस का हुआ। जब तेज और ठंडी हवा चलती तो हम मुँह खोल कर उसे खूब फेफड़ों में भर लेता। माँ की नज़र बचा कर किसी खेत में जा घुसता। ज्वार के खेत, मूंग के खेत, बैंगन के बगीचे आदि में घुसकर बड़ी देर तक लेटा रहता। मंगा उसे ढूंढ ढूंढ कर बेजार हो जाती। लोग उस बच्चे को हरिया कहकर पुकारने लगे। चिड़ियाँ और सांप हरिया के इष्ट मित्र थे, पंछी उसके पास ही जा बैठते। ऐसा लगता था मानो वह उनसे कुछ बातें कर रहा है। सांप उससे खेला करते थे, उसके शरीर से लिपट जाते थे। खेतों में वह सो जाता था और सांप उसके इर्द गिर्द घूमते रहते थे। अन्य किसी मनुष्य को देखते ही वे भाग जाते। हरिया की आयु 10 बरस की हुई। वह खड़ा होता तो ऐसा लगता जैसे कोई हरा सांप पूंछ के बल खड़ा है। हवा चलती तो हरिया झूम जाता। उसकी बातचीत, उसकी हंसी, उसकी चाल ढाल सब कुछ विलक्षण था। गांव के लड़के उसे विचित्र दृष्टि से देखते थे। लोगों को उस पर अपार प्रेम था, कोई उसे छेड़ता न था, सब लोग उसे हंसाते थे, कुछ लोग उससे हंसी मजाक करते थे। हरिया अधिक न बोलता, हर बात पर यूं ही हंसता, अधिकतर खेतों में रहता, घर बहुत कम आता। उसके बारे में मंगा की चिंता जाती रही। वह कहने लगा, उस लड़के का वही हाल है, वह हरा भरा पैदा हुआ है, सो हरी फसल का उससे अटूट नाता है, हरे शस्यों से उसका अटूट नाता है, वही शस्य है, शस्य है, शस्य ही वह है। फिर भला वह घर क्यों आए? जब कभी वह घर आता, मंगा उसे खाना खिलाती, ऐसा लगता था कि हरिया को खाना खाने की आवश्यकता नहीं। खेतों में वह जो चाहता खा लेता था, जो वस्तु हाथ आती उसे कच्चा खा जाता था। हरिया अन्य लोगों से कम मिलता, केवल धर्मा राव से तपाक से मिलता था। धर्मा राव को वह कभी छोड़ कर न जाता, उसे भैया कहकर पुकारता। धर्मा राव भी हरिया से बहुत प्रेम करता था। वह कहता, राजा भले ही चले जाए, हमारी विद्याएं भले ही नष्ट हो जाए, अकेला हरिया बचा रहे तो काफी है। दोनों मिलकर खेतों में दिन भर घूमा करते और शाम को देर से लौटते। जब धर्मा राव साथ होता तो पंछी और सांप हरिया के पास न आते थे। वे धर्मा राव पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए दूर दूर से ही कतरा कर चले जाते। उसके बाद वे हरिया से भी एक दो दिन तक रूठे रहते, परंतु हरिया उन्हें मार पीट कर फिर उन्हें दोस्ती कर लेता था। धर्माराव रंगा जम्मा के घर से लौटता हुआ यही सोच रहा था। दिन ढल चुका था। दूर से हरिया ने उसे देखा, देखते ही पुकारा, भैया। फिर वह दौड़ा दौड़ा आया और धर्माराव से लिपट गया। ऐसा लिपट गया जैसे पान की बेल अलसी के पेड़ से लिपट जाती है। धर्माराव बोला, भाई तुम्हारी 1000 वर्ष की आयु होगी। उसी समय एक तीतर न जाने कहाँ से उड़ता हुआ आया और कूक उठा। धर्माराव के हृदय में एक आघात सा लगा। हरिया ने उसे खेतों की ओर बुलाया। धर्माराव बोला, भाई मैंने खाना नहीं खाया। हरिया धर्माराव की ओर मुड़ मुड़ कर देखता हुआ चला गया। धर्माराव आगे चल पड़ा। उसका मन उस अपशकुन पर व्यथित हो रहा था। आघात बड़े नाजुक स्थान पर लगा था। क्या हरिया को भी खतरा है? धर्माराव सोचता सोचता आगे बढ़ा। उसे अपनी सुधि न थी। थोड़ी दूर चलकर उसने लगा कि पीछे से कोई छू गया है। उसने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में जैसे किसी ने पिचकारियों से चांदनी की धार फेंकी हो। एक 12 वर्ष की लड़की हंस रही थी। अनजाने में ही उसके शरीर पर कामदेव आक्रमण किया चाहते थे। उसकी श्वेत एवं शुभ्र दंत पंक्ति सुदर्शन चक्र के कोर की भांति शान लगाई जान पड़ती थी। उसके कान पांचजन्य जैसे थे, नयन कमलों को भुला रहे थे, नासिका कौमादकी थी। उसकी भौहें किसी शारंग के द्विधा विभक्त भागों जैसी थी। उसकी मूर्ति अत्यंत मनोज्ञ थी। वह देवदासी थी, वेश्या रत्नगिरी की लड़की, उसी वेश्या को जो रामेश्वर शास्त्री की उपपत्नी थी। उसने धर्माराव से कहा, भैया कहाँ चले? धर्माराव के स्मृति पथ पर उसके पिता की मूर्ति नाच उठी। वे मूर्तिमान वर्णाश्रम थे, वे भारतवर्ष की आत्मा थे, वे त्रय विद्या की व्याख्याता थे। देवदासी मंदिरों में, विशेषकर दक्षिण भारत के मंदिरों में मध्ययुगीन प्रथा के अनुसार एक नर्तकी की नियुक्ति होती थी। यह नर्तकी भगवान के सम्मुख नृत्य करती और अपने जीवन तथा यौवन को भगवान के चरणों में अर्पित करती थी। वह किसी से विवाह न करती, भगवान ही उसके पति समझे जाते। इस देवदासी प्रथा का दक्षिण में सुदीर्घ तथा रोचक इतिहास है। इस उदात्त तथा पवित्रतापूर्ण प्रथा में धीरे धीरे कामुकता और भ्रष्टाचार का समावेश होता गया और अंत में यह प्रथा समाप्त हो गई।